क्या बढ़िया बढ़िया तो प्रेम है। तो यह आनंद घर से तो गुरु के घर पर और उससे प्रजा के स्त्रियों के सामने आनंद ज्यादा कि उनको आनंद अधिक आ रहा है। इस बात के घर गुरु गृह प्रिय सदन और सासुरे ससुराल में तो महाराज एक बार दो बारी हुई और दर्शन ही वहां कहां थे लोगों को। भाई जब जहां पहुनाई जहां पहुनाई हुई तब तक कहीं शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। उसमें जो रुचि मधुरी माँ थी वो कहीं नहीं राम जी को मिले क्यों नहीं मिले। वो महाराज बरसों से प्रतीक्षा कर रही थी बरसों से। बहुत पुरानी बूढ़ी माँ थी वो बड़ी लंबी थी। रामलला छोटे से थे इतनी बड़ी और कितनी बूढ़ी थी बहुत पुराने जमाने की और प्रतीक्षा कर रही है। मतंग ऋषि के साथ चली जाती वे ब्रह्मलोक में जाते हुए कह रही बेटा तुम यहाँ रहो यहाँ भगवान राम पधारेंगे तेरे को दर्शन देंगे। उसकी प्रतीक्षा में थी कितने दुर्लभता से भगवान मिले। वे भगवान ले रहे भोजन सबरी दे रही है उसके आनंद का क्या ठिकाना है। तो प्रेम से प्रियतात्मन कान पत्रम पुष्पम फलम पोयम यो मे भक्तिया प्रयचरित तदम भक्त्युपरित भक्ति शब्द आया प्रियतात्मन जिसका इतना अंतकरण भगवान में लगा हुआ है वो भगवान कहते मैं स्वयं ले लेता हूं। इस बात से एक संत ने कहा है कि तत्वेता तुम लोग में भोजन किए अपार एक शबरी एक विदुर घर रुच पायो द्वैवा। रामावतार में एक दफे तृप्तिपूर्वक भोजन मिला कृष्णावतार में भी एक दफे भोजन मिला विदुर जी के घर पर। तो तत्वेता तिम लोक में भोजन किए अपार एक शबरी एक विदुर घर रुच पायो द्वैवा। इसमें क्या है प्रेम है। भोजन बढ़िया से बढ़िया आप हम बना सकते हैं क्या। महाराजा जनक की तरह हमारे घर में तैयारी हो सकती है नहीं हो सकती। पर क्या प्रेम भी शबरी के समान नहीं हो सकता हृदय नहीं हो सकता है क्या। हो सकता है उसे बढ़कर भी हो सकता है। तो भगवान को प्यारा लगे तो भगवान की तरफ भावक ग्राह इतना रखिए और भाव बनाना है। समय ज्यादा हो गया क्षमा करेंगे।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
तो इसी जीवन में आपको भक्ति का रसास्वादन कराने के लिए है। ज्ञान ज्ञान इसी जीवन में आपको जीवन मुक्ति का विलक्षण सुख देने के लिए है। ये दुख में ताप में संसार में जो दुखी होते हुए सड़ते हुए लोग हैं दिन भर में सौ सौ धक्के खाएं तमाशे गोश के देखें उनको तत्काल ही दुख से छुड़ाने वाली इसी जीवन में दुख से छुड़ाने वाली भक्ति है। इसी जीवन में दुख से छुड़ाने वाला तत्व ज्ञान है। और यदि बड़ा प्रबल प्रतिबंध हो और भक्ति और ज्ञान जीवन में आने लग जाए तो कुछ थोड़ा बहुत प्रतिबंध शेष रह जाए तो उसको गर्भ में ही दूर कर देते हैं, अगले जीवन में भी दूर कर देते हैं, दूसरे लोक में भी दूर कर देते हैं, लेकिन आपके दुख के निवारण का उपाय परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की भक्ति, शुद्ध से शुद्ध जो परमेश्वर है उससे उसको प्राप्त करने का यदि लक्ष्य आप जीवन में बना लें तो दुनिया में छोटी छोटी बातें छूटती रहें, आती रहें, जाती रहें। और जैसे बड़ा काम करने वाले को छोटी छोटी बातें जो हैं वो रोकती नहीं हैं, सुख दुख नहीं दे सकते हैं, ऐसे ही आपको नहीं दे सकेंगे। इसलिए नारायण हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप भगवान का नाम अपने जीवन में जरूर जोड़िए। बहुत सारे काम करते हैं, 5 मिनट 10 मिनट भगवान का नाम लीजिए, जितना अधिक बने उतना लीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, चिंतन कीजिए, विश्वास कीजिए। असल में सबसे शुद्ध शुद्धातिशुद्ध एक ही वस्तु है, जिसमें माया नहीं है, जिसमें अविद्या नहीं है, वो शुद्ध वस्तु केवल परमात्मा है। और अंतःकरण शुद्धि का एक ही उपाय है कि यदि आप शुद्ध का चिंतन करेंगे तो आपका अंतःकरण शुद्धाकार हो जाएगा और शुद्ध हो जाएगा। बाकी जो अशुद्धियां हैं वो तभी तक रहती हैं जब तक परमेश्वर का चिंतन अपने हृदय में नहीं होता है। अति पाप प्रसक्तोपि ध्यायन निमिषमच्युतम भूयस्तपस्वी भवति पंक्ति पावन पावनः। यदि आप अपने को पवित्र करना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं, सत्य के साथ जोड़ना चाहते हैं, परमानंद का अनुभव करना चाहते हैं, इस संसार में रह के भी यदि सुखी रहना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन को धर्म के साथ, भक्ति के साथ, योग के साथ, ज्ञान के साथ, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के नाम के साथ अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा जोड़िए, और अधिक से अधिक जोड़ सकें तब तो कहना ही क्या। स्वामी जी महाराज ने कल आज्ञा दी थी कि आना है ना, इसलिए इनकी बात मान के आ गया। आज हमने एक दिन की छुट्टी मनाई थी अपनी कि एक दिन पूरा विश्राम करेंगे, प्रवचन नहीं करेंगे, कम से कम एक दिन तो ऐसा मिले, क्योंकि कल से हमको फिर संपूर्ण अध्यात्म रामायण का 21 दिन में प्रवचन करना है मथुरा दास हाल में। कल से प्रारंभ होगा और 20-21 दिन तक चलेगा, तो वो ह्यूजिस रोड पर लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास शाम सुबह दोनों चलेगा। तो कल से तो फिर धुआंधार लगना है, इसलिए मैंने एक दिन की छुट्टी मनाई थी। परंतु जब स्वामी जी ने कहा, बहुत दिन से जानता हूं, सन 35-36 से स्वामी जी से अपना परिचय है, इनका वैराग्य, इनका त्याग, इनका सदाचार, इनकी योग्यता हमारी आंखों के सामने बारंबार आती रहती है, तो उसका तो वर्णन करेंगे तो इनको संकोच होगा, है ना। लज्जन्ते दुरितोद्यमादिव निजस्तोत्रानुबंधादपि। सत्पुरुषों का स्वभाव होता है कि उनकी तारीफ की जाए तो उनको शर्म आने लगती है, संकोच होने लगता है, तो इनको संकोच में डालने का कोई कारण नहीं है, केवल इनकी आज्ञा का पालन करने के लिए आप लोगों के बीच में आया था। आप सब लोग नीचे बैठ के सुनते हैं, सद्भाव से बंबई में इतना समय देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोगों का जो सद्भाव है का वो हमारे मन को पवित्र करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ओम शांति शांति।
थोड़ा सा कीर्तन कर लें,
कीर्तन कर
सीताराम सीताराम
भगवंशी वाले की जय।
चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव संमंतव्य सम्यक व्यवसतो ही सह। श्रीमद् भगवद गीता में नौवां अध्याय, उस नौवां अध्याय को राज विद्या राजगुह्य योग नाम दिया गया है। मानव विद्याओं की राजा है और गोपनीयों की भी राजा है, ऐसी मैं विद्या कहता हूं। तो राज विद्या कहकर भगवान ने चौथा और पांचवें दो श्लोक सुनाए और राजगुह्य है मानो गोपनीय में सबसे जो श्रेष्ठ है वो विद्या भगवान ने अब इस अंतिम प्रकरण में वर्णन की है। भगवान ने कहा भी अनन्या सिंधियंतो माम ये जना परिउपासते, जो अनन्य होकर मेरी उपासना करते हैं उनको अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना और प्राप्त वस्तुओं का संरक्षण करना, ये खास मेरा काम हो जाता है। ऐसे कहकर कहा कि और देवताओं के भक्त हैं वे भी वास्तव में तो मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि परमात्मा सब में परिपूर्ण है, कहीं भी कुछ भी वो पूजन करता है तो भगवान का ही होता है। जैसे लिखा है आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, आकाश से गिरा हुआ जैसे समुद्र को प्राप्त होता है, ऐसे सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, किसी को नमस्कार करो भगवान को ही प्राप्त होता है। तो ये तेन देवता भक्ता श्रद्धयान्य था, ते भी माँ में वो कौन थे, वो मेरा ही पूजन करते हैं। कारण उसका क्या है, अहम ही श्रवि यज्ञ नाम भोगता से प्रभु रे, संपूर्ण जितने यज्ञ है, यज्ञ कहने का मतलब दान है, तप है, तीर्थ है, व्रत है, मेरा अध्ययन आदि आदि जितने शास्त्रविद कर्म है, उन कर्मों का वास्तव में वर्ण भगवान ने किया, आज्ञा भगवान ने दी है, तो उनके सबके अधिपति भी भगवान है और सबके भोक्ता भी भगवान है। तो सब कुछ भगवान ही सबसे सबकी चीज वो ग्रहण करते हैं, पर न तो माम अभिजानते तत्व, तो तत्व से मेरे को नहीं जानते, अतः पतन उसका पतन होता है, चवंती थे। तो आप कहीं भी आदर सत्कार करते हैं, पूजन करते हैं, तो वहां भगवान को ही प्राप्त होता है, परंतु आप दूसरी बात मान लेते हैं एक बीच में तो वो एक आड़ लग जाती है। अगर दूसरी कल्पना न करें तो बिल्कुल संपूर्ण व्यवहार के भोक्ता भगवान है, और भूल जाने से ही हमारा व्यवहार गलत होता है। अगर इस तत्व को हम जाने तो किसी के साथ भी बुरा बर्ताव हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रभु के साथ ही कर रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र, सब जगह भगवान व्यापक है, और उसमें भी भगवान ने कहा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से हृदय भगवान रहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, तो हृदय में जो भगवान है उसका ही तो पूजन हम कर रहे हैं। आराम हम बर्ताव करते हैं तो वो भीतर में विराजमान है, उसी के ही साथ बर्ताव कर रहे हैं। किसी का आदर सत्कार करते हैं तो दिखने में तो शरीर का दिखता है, परंतु वास्तव में वो शरीर का आदर सत्कार नहीं कर रहे हैं, इसके भीतर में जो चेतन है उसका आदर सत्कार कर रहे हैं। और वो चेतन है वह अंतर्यामी परमात्मा भी विराजमान है, और जीव को भी माना जाए तो ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, वो केवल साक्षात परमात्मा का ही अंश है। तो परमात्मा का ही हम पूजन कर रहे हैं, हृदय में वो विराजमान है, और अगर किसी को दुख देते हैं तो भगवान को ही कष्ट दे रहे हैं। भगवान ने तो यहां तक कह दिया है कि अपने आपके शरीर को भी शास्त्र निषिद्ध रीति से दुख देता है, तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि विकर्षयन्त शरीरस्थम भूतग्राम चेतसा मान चेवांत शरीरस्थम, मेरे को दुख दे रहे तो अंत शरीर में मैं स्थित हूं। तान विद्या आसु निश्चयान, उसको आसु निश्चय वाले संयोग असुर मेरे साथ विरोध करते हैं, ऐसे ही शास्त्र रीति के बिना जो अपने शरीर को दुख देता है, इंद्रियों को दुख देता है, वो भी मेरे को ही कष्ट देता है, असुर ही है। शास्त्र रीति से तप करते हैं, व्रत करते हैं, उसका दोष नहीं, वो तो शास्त्र की आज्ञा है। ऐसे किसी को भी हम कष्ट देते हैं तो हम साक्षात भगवान को कष्ट देते हैं, और किसी का ही आदर सत्कार करते हैं तो भगवान का ही करते हैं, क्योंकि सब में भगवान है, ये बात एकदम पक्की निश्चित सच्ची बात है। भगवान स्वयं कहते हैं, और भगवान के तत्व को जानने वाले महापुरुषों को इसका अनुभव है कि सब में भगवान विराजमान है। ऐसे वो प्रभु है, उसकी प्राप्ति सुगमता से कैसे हो, तो भगवान ने वो राज विद्या राजगुह्यम पवित्र विद्मोत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुखसुखम कर्तुम अव्ययम। इसमें आठ विशेषण दिए, उसमें सुसुखम कर्तुम का बड़ी सुख से इसकी प्राप्ति हो जाती है। तो सब जगह परमात्मा है तो वहां पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तिवृतम अश्नामि प्रयतात्मन। जो पत्र पुष्प फल जल जो कुछ मेरे को देता है तो मैं उसको स्वयं ले लेता हूं, भोग लगा लेता हूं। तो हम और भी किसी के साथ बर्ताव करते हैं, सेवा करते हैं, तो वहां भगवान स्वयं वो सेवा स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो हम जानते नहीं, अहम ही सर्वी अज्ञानम भोक्ता च प्रभु रेव च, सबका प्रभु मैं हूं और भोक्ता मैं हूं। न तो माम अब जानते तत्वेन अतश्चवंति थे, तत्व से मेरे को नहीं जानते, इस वास्ते उनका पतन होता है। हरेक क्रिया हम भगवान के साथ करें तो भगवान हमारे प्रसन्न होंगे। वो क्रिया कैसी हो, मां निषिद्ध तो होगी नहीं, साधारण साधारण क्रिया से भी भगवान राजी होंगे। कैसे, जैसे एक बालक है वो मां की गोदी में खेलता है तो मां राजी होती है, वो दौड़कर दूर चला जा करके हंसता है तो मां राजी होती है, वहां से दौड़ करके गोद चढ़ जाता है तो मां राजी होती है, वो खेल करता है तो राजी होती है, वो मां को ठगने के लिए कुछ बनावटी रोना भी करता है तो भी मां राजी होती है। बालक की वो कौन सी चेष्टा है जिससे मां राजी ना होती हो। इस तरह से सब जगह भगवान को जो कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव माता रामो मत पिता रामचंद्र, मेरे माता पिता भगवान है, भगवान हमारे सब जगह विराजमान है, ऐसे भगवान को समझकर हम काम करते हैं तो हमारी प्रत्येक क्रिया भगवान को प्रसन्न करने वाली होती है। निषिद्ध तो कर ही नहीं सकते, तो सब जगह भगवान को देखते हैं तो कहते हैं हम, मैं किन से अब बैर करूं। श्रीमुख से भगवान कहते हैं कि घटघट हों बेरूं, मैं सब जगह मैं हूं विराजमान, तो भगवान से बैर कैसे किया जाए। हमारे प्रभु ही हैं सब जगह, उसकी मैं सेवा कर रहा हूं। इस वास्ते भगवान कहते हैं भैया तेरे को मेरी पूजा करने के लिए और किसी वस्तु को लाने की आवश्यकता नहीं, बड़ी सरल बहुत सुसुखम कर तुम कहते हैं कि यत करोषि यदश्नासि यत जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्ते तत्पुरुष मदर्पणम। यत करोषि, तू जो कुछ करता है वो मेरे अर्पण कर दे, मैं भगवान का पूजन कर रहा हूं। यत करोषि तो क्या, जैसे जीविका के काम करते हैं, कोई व्यापार करता है, कोई दलाली करता है, कोई नौकरी करता है, कोई खेती करता है, ऐसे जो कुछ तुम काम कर रहे हो अपने वर्ण आश्रम के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार, देश काल के अनुसार, जो शास्त्र की और धर्म की और लोगों की मर्यादा अनुसार करते हो, वो सब कुछ मेरे अर्पण कर दो। यदश्नासि, जो तुम भोजन करता है, खाता है, पीता है, शरीर निर्वाह के लायक चाहे औषधि लेता है पवित्र, वो भी तुम मेरे अर्पण कर दे। यह जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि, तो यज्ञ दान और तप ये जो शास्त्रीय क्रियाएं हैं वो भी मेरे अर्पण कर दे। यज्ञ दान तप तो साफ कह दिए, इसके सिवा वेदाध्ययन है और जितने जो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार व्रत उपवास आदि के तीर्थ व्रत आदि के जितने हैं, तत्पुरुष मद अर्पण तुम मेरे अर्पण कर दे। केवल भगवान की सेवा ही मैं कर रहा हूं तो क्या होगा, शुभाशु फले रेव मोक्ष से कर्म बंधन ही, कर्मों के जो बंधन है शुभ अशुभ उन संपूर्ण बंधनों से तू मुक्त हो जाएगा। और ऐसे मुक्त होकर तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। ये संन्यास योग हुआ, त्याग करने का योग हो गया। ध्यान दें कि कितनी सरल बात बता दी कि जो कुछ तुम करते हो मेरे अर्पण करो, तो सब कुछ भगवान की अर्पण कर रहे हैं। देखो अर्पण तो भगवान की होता है, हम नहीं जानते हैं, नहीं करते हैं, इस वास्ते उस लाभ से हम वंचित रहते हैं। प्रभु से अलग हम हो नहीं सकते, प्रभु हमारे से अलग हो नहीं सकते। जैसे हमारी सामर्थ्य नहीं है प्रभु से अलग होने की, तो ध्यान दें प्रभु में भी ये शक्ति नहीं है कि हमारे से अलग हो जाए। उस सब जगह परिपूर्ण अलग हो कैसे जाए, हो सकते नहीं भगवान हमारे से अलग, हम उनसे अलग हो नहीं सकते। किंतु हम उसको भूल जाते हैं, हम उस तरफ देखते नहीं है, न देखने से वो दिखते नहीं है। 13वां अध्याय में कहा सूक्ष्मत्वा तद अविज्ञेय, वो सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है, सूक्ष्म होने से वो जानने में नहीं आता। और उपनिषदों में आता है दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्मदर्शी पुरुष सूक्ष्म एकाग्र बुद्धि से उसको देखते हैं। तो वो कैसे देखते हैं, जैसे एक जगह मानो लिखा है कि श्रीमद् भगवद गीता ऐसा लिखा हुआ है, तो वो सबको दिखता है श्रीमद् भगवद गीता, ऐसे वे लाल लाल अक्षर हैं तो सबको दिखते हैं। परंतु जिनको अक्षरों का ज्ञान नहीं है उनको श्रीमद् भगवद गीता नहीं दिखता है, दिखते हुए भी नहीं दिखता। वो अगर चित्रकार हो तो ठीक वैसा लिख देगा, परंतु क्या है इसका पता नहीं। जितना अक्षरों का ज्ञान है उतना वो कह देगा दूसरे को, ज्ञान है तो श्रीमद् भगवद गीता ऐसा कह देगा, अक्षर बता देगा। परंतु इसका अर्थ क्या होता है इसका अगर ज्ञान है, ज्ञान नहीं है तो वो नहीं देख सकेगा। और जिसको ज्ञान है अक्षरों का, और ये तो भगवद गीता का नाम लिखा हुआ है, इतना ज्ञान है वो उसको जानता है, परंतु व्याकरण का ज्ञान नहीं है, तो श्री का क्या अर्थ है, श्रीमद् का क्या अर्थ है, भगवत का क्या अर्थ है, गीता का क्या अर्थ है, कैसे ये शब्द बनता है उसको नहीं जानता। और व्याकरण पढ़ा हुआ है तो वो श्रीमद् भगवद गीता ये चार मिलकर के शब्द बना है, ठीक जानता है धातु प्रत्यय सहित। और गीता को साधारण रीति से जानता है तो उसके साधारण अर्थ फुरता है, और गीता को ठीक जानता है तो श्रीमद् भगवद गीता देखते ही गीता का संपूर्ण विषय 18 अध्याय अगर आ जाते उसके साथ। तो लिखा हुआ तो पूरा है परंतु सूक्ष्मत्वात्, वो सूक्ष्म होने से हरेक नहीं देखता, परंतु सूक्ष्म या सूक्ष्म वृत्ति जिनकी है और सूक्ष्म दर्शी है तो वे उस सूक्ष्म को देखते हैं। भगवद गीता का सब विषय उनके सामने आ जाता है। ऐसे इस संसार को देखने वाले इस संसार को देखते हुए भी परमात्मा को नहीं देखते। अब जितना जितना ज्ञान होगा वो संसार को उतने उतने रूप से देखेगा कि हमारे प्रभु ही इन रूपों में है, परंतु जितना जितना ज्ञान होगा उतना उतना वो देखेंगे, गहरे उतर करके देखेंगे। जैसे भगवद गीता का संपूर्ण विषय उस सामने आ जाता है, ऐसे देखने वाले इस संसार को देखते ही श्री राम मैं सर्व जग जानी करूं प्रणाम जोर युग पानी, श्री राम मैं सीता माता है, राम जी है, ऐसे सीताराम देखता है और करो प्रणाम जोरी जुग पानी सब संसार में देखा कि सीताराम 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 ही है ही सीताराम ऐसे उसको दिखता है। इस वास्ते भगवद गीता ने कहा कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है जिनको सब कुछ परमात्मा ही दिखती है, परमात्मा साक्षात दिखते, संदेह नहीं होता उसे कभी भी। कैसे देखते हैं? जैसे एक 10 रुपयों का नोट है, 10 रुपयों का नोट है उसको देखते हैं सभी, और ऐसा कोई ग्रामीण आदमी हो बिल्कुल जंगल में रहने वाला और उसको नोट का ज्ञान न हो, उसको पता नहीं कि 10 रुपयों का नोट है, पढ़ा लिखा है नहीं, उसके सामने कहा जाए कि ये 10 रुपयों का नोट है, वो कहेगा मेरे को ठगते हो, ये तो कागज का पुर्जा है। अरे भाई 10 रुपये हैं, रुपये एक भी नहीं है इसमें, तो इसमें रुपया कहाँ, बिल्कुल कागज है, रुपया मैंने देखा ये रुपया नहीं है। आप कह रहे 10 रुपया है, रुपया नहीं 10 रुपया, वो कहते 1 रुपये जितने भी वजन नहीं है इसमें, फिर 10 कैसे हो गया? आप कह रहे 10 है ये, कहते मैं कैसे मान लूं, रुपया का कोई लक्षण नहीं करता, रुपया आग मेरे को जलता नहीं ये जल जाएगा, रुपये को आप पानी में रखो गलता नहीं ये गल जाएगा, रुपया को आप खेचो टूटेगा नहीं ये फट जाएगा, रुपया उड़ता नहीं ये उड़ जाएगा, एक भी लक्षण रुपये का नहीं घटता मैं कैसे मान लू। तो वो जैसे नहीं मान सकता कि रुपया है, परंतु क्या वो कितनी युक्तियां बता दे तो आपके मन में ये जस सकती है कि 10 रुपया नहीं है, आप कभी नहीं मान सकते कितने 10 रुपये है। ऐसे ही ज्ञानी और अज्ञानी की बात है, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने, दिन और रात्रि का अंतर है, उसकी दृष्टि में परमात्मा है और जो निशी दृष्टि है वो कहते हैं परमात्मा है ही नहीं, संसार ही है परमात्मा है ही नहीं, झूठी बात। वे कहते हैं कि संसार है ही नहीं, है ही परमात्मा, वो रूप इस रूप से दिख रहे हैं, जैसे रुपये नोट रूप से कागज रूप से दिख रहे हैं, ये तो रुपये ही है, वो कहते बिल्कुल नहीं, और दोनों ठीक कह रहे हैं, परंतु जानकार है उसका कहना बरोबर ठीक है, अनजान का कहना सही नहीं है। उसी पुर्जे को लेकर जाओ, 10 रुपये की वस्तु बाजार से मिल जाएगी, पुर्जे में नहीं मिलेगी, वो कहा जाए इस पुर्जे के आप कितने पैसे देते हैं, वो कहते एक दो पैसा भी नहीं दे सकता, क्या काम का, अगर कोरा कागज होता तो उस पर लिखने में काम आता, दोनों तरफ छपा हुआ अगर क्या काम का, कोई काम की चीज नहीं। तो आप कहते हैं रुपये 10 है। इसी तरह से परमात्म तत्व को जानने वालों की दृष्टि में ये संसार नोट है, लिखने में ये जन्मते हैं मरते हैं विकृत होते हैं तरह तरह क्रियाएं होती है, और परमात्मा नित्य निरंतर रहने वाले हैं, तो इनको हम परमात्मा कैसे माने। तो वे देखने वाले कहते हैं परमात्मा कैसे न माने, है ही परमात्मा, वो कहते परमात्मा है ही नहीं, इतना उनके अंतर है। परंतु सज्जनों सच्ची बात है कि परमात्मा है, ये अंत में सच्ची यही ठहरेगी, गलत बात सिद्ध नहीं होगी। भगवान कहते हैं मैं ऐसे सब में परिपूर्ण हूं, अहम ही सर्वे ज्ञानाम भोगता च प्रभु रेव, जितने शुभ कर्म है उनका भोगता भी मैं हूं, सबका मालिक भी मैं हूं, न तो माम अभिजानती, मेरे को जानते नहीं, अतश्चंद इस वास्ते उनका पतन हो जाता है, बार बार जन्मते मरते दुख पाते रहते हैं, तो जहां मेरे को जाना वो दुख सदा के लिए उसका मिट गया। ये राज विद्या राजगुह्यम भगवान कहते हैं नौवें अध्याय में, ये विद्याओं की राजा है, गोपनीयों की भी राजा आएगी, हरे को कहना नहीं है, ऐसी वास्तविक चीज है ये। और ये परमात्मा है, पत्र पुष्प फल जल से प्रसन्न हो जा, राजी हो जा, इस वास्ते सब कुछ मेरे अर्पण करो। अर्पण करने का तात्पर्य क्या है कि अपना मत मानो, ये तो भगवान की वस्तु है ऐसा मानो। अपनापन किया है, यही हमने गलती की है, परमात्मा की वस्तु पहले से थी, अब भी है और अगाड़ी भी रहेगी, हमने बीच में आकर के छापा मारा है और कह दी हमारी है। आप जितने भाई बहन विराजमान हैं अपने अपने घरों के आप मालिक बने हुए हैं, परंतु आपसे पूछा जाए आज से 100 वर्ष पहले 200 वर्ष पहले इस घर का मालिक कौन था और 100 वर्ष के बाद मालिक कौन होगा, तो मैं पहले मालिक था पीछे रहूंगा ऐसा नहीं कह सकते। आपको यही मालूम होगा कि मैं तो बीच में आया हूं, ये बंबई शहर ऐसे ही पहले बसता था और हमारे बिना भी ऐसे ही रहेगा, हम तो बीच में एक आ करके और अपनी डुगडुगी बजाते हैं, ये कर क्या लेते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हमारा कुछ न है नहीं, परंतु अभिमान कर लेते हैं हमारा है। ऐसी एक कहानी आती है, हमने पुस्तकों में पढ़ी है, एक गुरुजी थे एक शिष्य थे, चले जा रहे थे, सुबह तीसरो में सो स्नान आदि करके और गांव में पहुंचे, वहां भिक्षा मिल गई, पा लिया, भिक्षा के बाद जाने लगे बाहर तो घाम हो गया। उस शहर के बाहर एक बगीचा था, उस बगीचे में चले गए, किसी ने मना किया नहीं, दोपहर के समय दरबार था नहीं, वो राजा की कोठी थी, भीतर में बहुत बड़े मकान है, वो कोठी बनी हुई है, उसमें चले गए। वो जाते हुए बात करते थे तो गुरुजी ने कहा कि बेटा सब जगह भगवान है और अपने भी उस भगवान में ही है, हम कुछ और बन जाते हैं तो और प्रतीत होते हैं, अगर हम कुछ बने नहीं तो उस प्रभु में ही हम स्थित है, इस वास्ते कुछ बनना नहीं, ऐसी बातें कह रहे थे। चले गए एक कमरा में गुरुजी, एक कमरा में चेला जी, अपना भजन स्मरण करने लगे। शाम को 4 बज गए, राजा की सवारी आई, सब लोग भीतर गए, अचानक भीतर में गए तो सिपाही गए पहले, तो शिष्य थे उनको पूछा तू कौन है, तो मैं तो साधु, एक थप्पड़ लगाए, निकल यहां से, साधु का काम है जो आकर कोठी में बैठ जाना, निकाल दिया, निकल गए, बड़ी शांति से चले गए, भीतर गए वहां बाजी बैठे, कौन है, कुछ नहीं बोले, उठो, उठ गए, चले जाओ, चले गए। दोनों अगाड़ी जाकर मिले, चेला ने कहा हमारी तो मार पड़ी, तो भैया तू कुछ बन गया होगा, बिना बने मार पड़ती नहीं, मार बनने से ही पड़ती, ना मारे में कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बना तो मार नहीं पड़ सकती, क्या हुआ, अगर तू कौन है, मैंने कहा साधु हूं, साधु बन गया ना, साधु बन गया तब मार पड़ी, हमारे जगह कौन है, मैं बोला ही नहीं, उड़ जाओ, उठ गए, चले जाओ आगे, हमारी मार नहीं पड़ी। तो ये मनुष्य बनता है, ये जीव बनता है, अगर बने नहीं तो बिना बने परमात्मा का स्वरूप है बिल्कुल, पर मन में अभिमान करता है मैं हूं, ये मैं हूं बन जाता है, तो ये मार पड़ी सभी, अगर प्रभु में रहे तो मार पड़े नहीं, ये केवल चुप रहने से काम नहीं होगा। आप कहते हम बने नहीं, और गुरु जी की तरह चुप रहेंगे, चुप रहना नहीं, भीतर से चुप हो जाए, भीतर में अपना अस्तित्व ही नहीं है। जो समस्त सच्चिदानंद घन परमात्मा है उनके साथ एक स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक उस परमात्मा में सब परिपूर्ण है, विराजमान है। न तो माम अभिजानंती, कहते वे मेरे को जानते नहीं, अतः च्यवंती थे, उनका पतन होता है। यान्ति देवव्रता देवान, पितृज्ञान्ति पितृव्रता, भूतान यान्ति भूतेज्या, यान्ति मध्याजिनो भी माम। जैसे पूजन करते हैं, काम करते हैं, उनके अनुसार उनकी गति होती है। अगर मेरा पूजन करते हैं फिर मेरे को प्राप्त होते हैं। और कैसी मेरी पूजा सुगम है कि पत्र पुष्प फलगल इससे भी सुगम, जो कुछ करते हो प्रभु के लिए करना शुरू कर दो। अब नया काम क्या करना पड़ा बताइए, पाप है, अन्याय है, शास्त्र विरुद्ध है, लोक मर्यादा से विरुद्ध है, वो तो करना नहीं है और होगा भी नहीं। कारण क्या, अर्जुन ने पूछा अत केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष, ये किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। अनिच्छन भी, जो नहीं चाहता है पाप करना वो भी पाप कर बैठता है, तो महाराज ये किससे प्रेरित होकर करता है, इसका प्रेरक कौन है, ऐसे अर्जुन ने पूछा है। तो भगवान ने उत्तर दिया कि काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्र महाशनो महापापमा विध्येन नैवेन। ये काम है, संसार से हम संग्रह और भोग लेना चाहते हैं, मेरे पास में संग्रह हो जाए, रुपये भी वस्तु भी मेरे को मिल जाए, संग्रह कर लूं और सुख भोग लूं, ये दो चीज है। इसलिए भगवान ने कहा है दूसरे अध्याय के 44वें में कि भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया प्रसिद्ध चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधु न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, भोग भोगना और पदार्थों का संग्रह करना, इन दो चीज में जो आसक्त है, प्रियता रखते हैं, लगे हुए हैं, वो परमात्मा में निश्चय वाली बुद्धि नहीं कर सकते, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, वो बुद्धि यहीं अटक गई, भोग और ऐश्वर्य में, संग्रह और सुख में, इसमें फंसे हुए हैं, वो भगवान को नहीं देख सकते। और इसमें आसक्त न होकर केवल भगवान का ही पूजन करते हैं, भगवान के ही दर्शन करते हैं, अपनी आसक्ति नहीं है, तो ये भगवान को देखते हैं, उनका पतन नहीं होता, वो जानते हैं सब जगह प्रभु को। उसके लिए भगवान कहते हैं कि मेरे अर्पण करता वो मुक्त हो जाता है। तो कहा जाए कि महाराज आपके अर्पण करने वाला मुक्त होता है, आपके अर्पण नहीं करता है उसका आप कहते हैं पतन होता है, तो आपके भी पक्षपात हैं। भगवान कहते हैं न समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, जितने प्राणी उनमें मैं समान रूप से परिपूर्ण व्याप्त हूं और समान रूप से मेरी कृपा है, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए सब मेरे को अत्यधिक प्यारे हैं, ऐसा मैं समान रीति से हूं। परंतु फिर भी ये भजन की तो माम भक्तिया, भक्ति से मेरा भजन करते हैं, मई ते वे मेरे में है और उनमें मैं हूं, मई ते सुचाप्य हम, सब में मैं परिपूर्ण होते हुए भी भजन करने वाले मेरे में हैं, और जो भगवान की भक्ति नहीं करते वे मेरे में रहते हुए भी मेरे में नहीं है किंतु संसार में है। वे मानते हैं कि मैं संसार में हूं, इस वास्ते संसार में है। एक एक व्यक्ति ऐसा मानते हैं कि मैं संसार में, मैं संसार में, सबके सब संसार में, और वास्तव में मेरे में है। तो ऐसा वे क्यों मानते हैं, तो वे स्वतंत्र हुए हैं कि आप साफ हुए, भगवान ने किए हैं कि भगवान ने स्वतंत्रता दी है, पशु पक्षी आदि योनियों में वे परतंत्र हैं। मनुष्य जन्म दिया है भगवान ने कि तुम इससे मेरे को प्राप्त हो जाओगे, तो प्रभु ने कृपा करके और इस शरीर में स्वतंत्रता दी, तो स्वतंत्रता दी है मेरे पास चले आओ। इसके लिए इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भगवान से विमुख हो गए। जैसे कोई बड़ा धनी आदमी किसी एक साधारण आदमी हो, परंतु प्यार उमड़िया धनी का, उसको एक मोटर भेज दी, इसमें तुम इससे लेकर चले आओ मेरे पास। अब वो मोटर मिलने पर वो क्या करता है कि मालिक की तरफ न जा करके दूसरी तरफ चल देता है, तो मोटर जितनी तेज होती है जल्दी पहुंचाने वाली, वो ही जल्दी दूर ले जाने वाली हो जाती है। ऐसे ही भगवान के दिए हुए शरीर से, इंद्रिया से, मन से, बुद्धि से हम प्रभु की तरफ बड़े तेजी से चल सकते हैं, परंतु विमुख होकर इतने दूर चले जाते हैं, इतने दूर इतने कर्म कर बैठते हैं, 84 लाख जोनी नरक ये सब भोगने पर भी एक दिन में किए हुए पाप नष्ट नहीं होते और बाकी रह जाते हैं। भगवान बीच में मानव शरीर देकर उसको मौका देते हैं कि तुम अब मेरे पास आ जाओ, परंतु हम उल्टे चलते हैं। वो प्रभु की दी हुई स्वतंत्रता, प्रभु की दी हुई सामग्री, प्रभु की दी हुई समझ और प्रभु का दिया हुआ जीवन का समय, इसका दुरुपयोग करके हम उल्टे चले जाते हैं। अगर ये समझ भगवान के चरणों में लगा दें, समय भगवान के चरणों में लगा दें, सामग्री को भगवान के चरणों में लगा दें, सामर्थ्य को प्रभु के चरणों में लगा दें, तो इतने से ही प्रभु प्राप्त हो जाएंगे। आपको नई वस्तु लानी नहीं पड़ेगी, नई योग्यता प्राप्त करनी नहीं पड़ेगी। जितनी जिसके पास जो योग्यता है वो वस्तु प्रभु को दे दो और प्रभु की वस्तु ले लो और अपने आप को दे दो और प्रभु को खुद को ले लो। ये यथावाम प्रपद्यन्ते तांस तथै भजाम्य हम, जैसे मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं उनको मैं उसी रीति से ही मैं भजन करता हूं। भगवान के बिना भक्त व्याकुल हो जाए तो भक्त के बिना भगवान व्याकुल हो जाए। भक्त भगवान के बिना रो पड़ता है तो भगवान भी उस भक्त के बिना रो पड़ते हैं। भक्त जैसे भजता है वैसे ही मैं भजता हूं, ये तो कहते हैं यथा तथा। एक मार्मिक बात और है, थोड़ा बहुत सत्संग करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, आस्तिकता रखते हैं, वे भगवान को प्यारे बहुत लगते हैं। जैसे लोभी को पैसे प्यारे लगते हैं, ऐसे भगवान को भक्त प्यारे लगते हैं। वे याद नहीं करते तो भी भगवान भक्त भक्त याद करते हैं, भक्त भक्त पर याद करते हैं। और भगवान की याद करने का हमारे पास में चिन्ह भी आता है, उसकी सूचना भी आती है। कैसे? आप ध्यान दें, अपने जीवन का अध्ययन करें, चलते फिरते, बैठते उठते, सोते जगते, कभी कभी भगवान की अचानक याद आती है, भगवान का नाम अचानक याद आता है, अचानक कोई नाम सुना देता है, अचानक कोई कीर्तन की लहर सुना देता है, अचानक कोई पुस्तक सामने आ जाती है, देखते हैं तो भगवान की बात लिखी हुई। ये भगवान याद करते हैं, उसका चिन्ह है। अगर अचानक भगवान याद आवे और उस समय में आप सावधान हो जाओ, ओहो भगवान याद कर रहे हैं मेरे को, तब तो अचानक भगवान याद आए। अगर उसका आदर करें और प्रसन्न हो जाए, जब ध्यान में कीर्तन में लग जाए, भगवान के स्मरण में लग जाए, तो भक्ति बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। विशेषता से तो भगवान की कृपा का आपने आदर कर दिया। अरे ज्यो ज्यो भगवत संबंधी बात मिले त्यों ही त्यों राजी हो जा, तो भगवान के पास में कौन सी ऐसी वस्तु है जो आपको न दे सके? ज्ञान है, वैराग्य है, प्रेम है प्रभु के चरणों का, अनन्य भक्ति है, ये सब कुछ हमें मिल जाएगा। हम केवल उसका आदर करें, भगवान की दिला हुई स्मृति का महत्व समझें और कृपा को समझें। वो हो ये कृपा केवल भगवान की तरफ से हुई है। ऐसे हम देखें वो बहुत विशेषता से उसका हमें अनुभव होगा। आप करके देखें, जैसे कल्पना करो एक कपड़े का व्यापारी है, बहुत तरह के उसके पास कपड़े हैं, बड़ी भारी दुकान है, उन कपड़ों के लेने के लिए कोई ग्राहक पहुंचे और वो पूछता है कि आपके दुकान के अच्छे कपड़े बताइए हमें, तो एक दो थान लाकर रख देते, ये देखो कैसा है, पसंद है आपको, खाना तो बहुत अच्छा है, ये है 10 थान दे दीजिए। वो 10 थान ले लेता है, पूछता इससे बढ़िया भी कपड़ा है? हाँ इससे बढ़िया भी है। वो लाकर दिया, ये कह रहे सर 20 थान इसके भी दे दीजिए, इससे बढ़िया कपड़ा है। हाँ 30 थान लाकर दिखाया, कहते एक गांठ इसी दे दीजिए, और भी बढ़िया है? हाँ इससे भी बढ़िया भी है। वो लाकर दिया, जो बढ़िया देखा कि 2 गांठ इसी दे दीजिए। उस व्यापारी की ताकत है कि बढ़िया कपड़ों को छिपा कर रखे? है उसी सामर्थ्य? क्यों रखेगा, तो दिया देने के लिए तो है। ऐसे ही प्रभु की कृपा का आदर करने लगे, प्रभु की महत्ता की तरफ आपका ख्याल हो और केवल यह आदर करें, आपको पैसे देने नहीं पड़ते, केवल अनुमोदन करें, वाह प्रभु बड़ी कृपा करी आपने, ऐसे उसका आदर करें। जो परिस्थिति भेजे उस परिस्थिति का आदर करें, जो स्मृति आ जाए उसका आदर करें, प्रभु संबंधी बातों का आदर करें, और ऐसे करते करते अगर एक दूसरी बात का ख्याल करें तो और विशेष लाभ हो। कभी आफत आ जाए उसमें राजी हो जाए, वाह प्रभु वाह बड़ी कृपा कर दी आपने, मेरी सुख की आसक्ति मिटाने के लिए आपने ये लीला रची है। विपरीत अवस्था आने पर फिर खुश हो जाएगा, वाह प्रभु ये तो बड़ी आपने कृपा कर दी। प्रभु के विधान को अपने इंद्रियां मन के प्रतिकूल समझते हुए भी उसको महत्व दें, उसका आदर करें कि हमारा मन तो नहीं चाहता, हमारा शरीर इस परिस्थिति को नहीं चाहता, हमारी इंद्रियां इस परिस्थिति को नहीं चाहती, परंतु आपका भेजा हुआ है, प्रभु का है ये, ऐसे समझने में खुश हो जाए तो वहां भगवान भक्त बन जाते हैं। और जब हमारी अनुकूलता में हम राजी होते हैं तो भगवान भगवान होते हैं, हम भक्त होते हैं। परंतु प्रतिकूलता में प्रसन्न होने पर भगवान अपने से ऊंचा बना लेते हैं, भगत हमारे सिरधाड़ी, भगत मुकुटमणि, मैं हूं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। कैसे है ये आप लोगों में देख लीजिए, आपका नौकर है, आपका काम करता है, आपके अनुकूल चलता है, आप भी उसके आराम की तरफ दृष्टि रख करके और काम लेते हैं, और वो बड़ा श्रेष्ठ आपका सेवक है तो राजी होता है, परंतु आप उसके प्रतिकूल भी काम ले लेते हैं, रातों जगा देते हैं और वो खुश होता है। जो ही आप काम धंधा कहते हैं तो ही राजी होता है और आपका काम करता है, आपके मन के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहता और करता नहीं। वो नौकर अपने मन के विरुद्ध कितनी आपकी आज्ञा क्यों न हो, वो प्रसन्नता से उस काम को करता है और बड़ा ही राजी होकर एहसान मानता है तो आप दास बन जाएंगे, वो मालिक हो जाएगा। इतनी मात्रा में न होते हुए भी हमने ऐसे देखे हैं और ऐसे सुने हैं कि जो नौकर है आपका मुनीम है और ठीक तरह से अपनी ठीक नियत से आपका काम करता है और कभी आपके किंचित मात्र भी नुकसान न हो, अगर हो जाए तो उसको असह्य हो जाता है और ठीक तरह से आपके जैसे लाभ हो ऐसी चेष्टा करता है और उम्र भर आपके काम करता है, अंत में छोटे छोकरे रह जाते हैं, बड़े बूढ़े चले जाते हैं, परंतु उस समय वो सेठ की तरह ही शासन करता है। जवान जवान लड़के उनको भी कहता है नहीं ऐसा काम नहीं करने देंगे तुम्हारे, वे भी दब जाते हैं, वे मुनीम जी कहते हैं, उनका हुक्म चलता है। घरों की स्त्रियां ससुर से बढ़कर आदर करने लग जाती हैं और घर के मालिक आप होते हुए उस मुनीम का इतना आदर करते हैं कि उनकी सम्मति के बिना व्यापार आप नहीं कर सकते। लेन देन करते हुए भी पूछते हैं, मुनीम जी से पूछेंगे, सलाह लेंगे और आपको कड़ाके के साथ कहते हैं नहीं ये काम नहीं कर सकते आप, ये आपके लायक नहीं है, आपके योग्य नहीं है, आपके वंश के अनुसार नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। तो आपके मन होते हुए भी चुप हो जाते हैं और कहते हैं ठीक कहते हैं मुनीम जी, ठीक कहते हैं, हमारे वंश के अनुसार बात कहते हैं, धर्म के अनुसार बात कहते हैं। जैसे मुनि वो मालिक बन जाता है, ऐसे भगवान के मात्र विधान में प्रसन्न होने वाला भगवान का भगवान हो जाता है और भगवान कहते हैं मैं इसको क्या दूं, क्या दूं इसको। हनुमान जी महाराज भगवान का काम करते हैं तो भगवान देखते हैं कि इससे मैं पूर्ण कैसे हूं, तो सीता जी की खबर लेने के लिए भेजते हैं, सब मंदिरों को भेजते हैं, मुद्रिका हनुमान जी को देते हैं, वो खबर लेकर के आते हैं। भगवान कहते हैं हनुमान तेने बहुत काम किया, कहते हैं मैंने नहीं किया, आपकी कृपा से हुआ। राक्षसों में गए, जो नर बांदर तो हमारा आहार है ऐसे कहने वालों में वहां जाकर के सीता की खबर लेकर आते हैं। भगवान आश्चर्य करते हैं कि भाई एक देवताओं के ऊपर भी शासन करने वाला रावण उसके पुर को कैसे जला दिया, और कहो समाचार तो कहो कैसे कैसे तुम गए, तो कहो महाराज ये तो आपका प्रभाव है। अब ध्यान देना है जहां भगवान पूछते हैं तो हनुमान जी क्या उत्तर देते हैं, लागी समुद्र, ये लंका को जला दिया मैंने, समुद्र लांगी और लंका को जला दिया और निस्तर गणपति राक्षसों का मैंने नाश कर दिया और वाटिका उजाड़ दी। ये बात कही, ये क्या है, ये निराभिमानता है, उनके मन में अभिमान नहीं है कि मैंने किया, ये सब आपका प्रभाव है। अगर हनुमान जी के मन में ये बात होती कि मैंने काम किया तो उनके कहने का प्रकार दूसरा होता। वो कहते हम लोग सब गए समुद्र के किनारे बैठे, विचार किया कि मर जाएंगे, मतलब पीछे लौट कर जाएंगे नहीं। अंगद घबरा गया, जाम भगवान ने आश्वासन दिया और महाराज मैं गया समुद्र उल्लांघ कर मैं गया। और क्या